नमस्कार भारत, 16 मार्च दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का शक्ति परीक्षण, मनोहर पर्रिकर को साबित करना होगा दमखम।
कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, उन्हें और सिर्फ 4 लोग मिले तो पूरी बाजू पलट सकती है।
उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी पर्दे में, सुनिए क्यों एक युवा कलाकार अचानक निशाने पर आ जाता है।
अभी थोड़ा स्ट्रेस भी हो गई हूँ क्योंकि सब लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, ओनली 15 इयर्स ओल्ड, और ये सब इतना मैच्योर्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, सोचा भी नहीं।
तीसरे टेस्ट मैच में रांची में ऑस्ट्रेलिया और भारत आज फिर होंगे आमने सामने।
Both teams have moved ahead from Bangalore. I think the focus should get back onto the series.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर को आज सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है। गोवा की 40 में से 13 सीट जीतने वाली भाजपा के मनोहर पर्रिकर ने 22 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है। वहीं 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को संघीय अदालत ने एक और बड़ा झटका दिया है। हवाई प्रांत के एक संघीय जज ने ट्रंप के कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगाने के नए एग्जीक्यूटिव आदेश को प्रभावी होने से चंद घंटे पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव आदेश जारी कर 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आगमन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हवाई के एक जज ने प्रांत के अधिवक्ताओं की के इस आदेश के अमरीकी संविधान का उल्लंघन करने की दलील को मानते हुए इस पर रोक लगाई है। इससे पहले ट्रंप के एक ऐसे ही एग्जीक्यूटिव आदेश को अमरीकी अदालतों ने रोक दिया था। नीदरलैंड्स में कल हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री मार्क रूट की मध्य दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने की प्रबल दावेदार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटें कम जीती हैं, लेकिन वो बड़े अंतर से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। पार्टी को 150 में से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। प्रधानमंत्री रूट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नीदरलैंड्स के लोगों ने गलत तरह के लोक लुभावनवाद पर रोक लगा दी है। गीरट वाइल्डर्स की इस्लाम विरोधी और प्रवासी विरोधी दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के प्रदर्शन उम्मीद से बहुत ज़्यादा खराब रहा है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 4 या 5 पार्टियों को गठबंधन करना होगा, प्रधानमंत्री रूट ने कहा। मैंने फोन पर यूरोपीय देशों के कई राष्ट्र प्रमुखों से बात की है। ये एक शानदार शाम है और आप देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में ब्रेक्जिट के बाद, अमरीकी चुनावों के बाद नीदरलैंड्स ने गलत तरीके के लोक लुभावनवाद पर रोक लगा दी है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन मार्क एरॉन ने नीदरलैंड के लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कट्टरपंथ के उदय को रोक दिया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेयरकल के चीफ ऑफ स्टाफ पीटर ऑल्टमायर ने नतीजों को शानदार बताते हुए नीदरलैंड्स को चैंपियन कहा है। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री सिग्मा गैब्रियल ने कहा, यदि नतीजों की पुष्टि हो जाती है कि दक्षिणपंथी लोक लुभावनवादी या वास्तव में दक्षिणपंथी कट्टरपंथी वाइल्डर्स की बड़ी हार हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ। ये यूरोप के लिए एक मजबूत संकेत है। ये दर्शाता है कि नीदरलैंड्स एक मूल यूरोपीय देश है जिसने अपने आप को उग्र होने नहीं दिया है, और मैं नीदरलैंड्स और यूरोप में लोकतंत्र को लेकर बहुत खुश हूँ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर ट्रंप टावर की फोन लाइनों को टेप कराने के आरोपों के बारे में नई जानकारियां जल्द ही सामने आएंगी। फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा है कि फोन टेपिंग के दायरे में कई तरह की चीजें थीं। वहीं अमरीकी सीनेट की खुफिया समिति में शामिल नेताओं ने कहा था कि उन्हें ट्रंप के दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है और वो इस पर यकीन नहीं करते हैं। समिति की अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में FBI और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुखों को गवाही देनी है। अमेरिका के न्याय विभाग ने याहू हैकिंग प्रकरण में 2 रूसी जासूसों पर मुकदमा शुरू कर दिया है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने रूस के सरकारी अधिकारियों पर आपराधिक मामला शुरू किया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत गोवा से, जहां रक्षा मंत्री से दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए मनोहर पर्रिकर को आज न केवल अपनी बल्कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी रक्षा करनी है। ये साबित करना है कि चुनाव में भले ही कम सीटें मिली, लेकिन अन्य विधायकों के समर्थन से उनकी पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई है। पणजी के विधायक सिद्धार्थ कुंचालियंकर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में होंगे, जिनकी अध्यक्षता में सदन में शक्ति परीक्षण होगा। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में बताया।
कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, तो उसके मुताबिक एजेंडा एक ही है। फर्स्ट इज स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू एमएलएस एंड आफ्टर दे स्वेर इन आफ्टर दे बिकम द एमएलएस देन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द करंट गवर्नमेंट। हम एपेक्स कोर्ट के गाइडलाइंस पे जाएंगे और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर हाउस की एक ही एजेंडा है, वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट विल बी डिसाइडेड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
ये थे गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर सिद्धार्थ कुंचालियंकर। कांग्रेस का दावा है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और दो दिन के मुख्यमंत्री साबित होंगे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बहुमत जुटाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। किसके दावे में कितना दम है, जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने गोवा में स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से बात की।
ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत आसानी से बहुमत यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर सकेगी, क्योंकि एक तो उनके पास अभी 21 विधायक हैं 40 की विधानसभा में, और एक निर्दलीय विधायक है जिन्होंने अपना सपोर्ट उन्हें दिया है, तो उनके पास 22 है। दूसरी बाजू से जो कांग्रेस, जिनके पास 17 विधायक हैं, उन्होंने तो अभी तक ऐसा कुछ मूव नहीं किया है या ऐसा कुछ बोला नहीं कि कुछ अलग स्ट्रेटेजी। हमने कांग्रेस वाले से पूछा था तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कुछ अलग स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं वो, जिससे कुछ होगा। तो लगता है कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी और एक राष्ट्रवादी के एक विधायक है चर्चिला लेमा, वो भी मनोहर पर्रिकर की जब शपथ विधि हुई थी तो वहां आए थे वो, और उन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, तो लगता है कि वो भी अपोज नहीं करेंगे। तो मनोहर पर्रिकर के पास बहुत कुछ नंबर है। कांग्रेस के पास 17 विधायक है और उन्हें और सिर्फ 4 लोग मिले तो पूरी बाजू पलट सकती है कांग्रेस। वो तो प्रयत्न करती रहती थी, लेकिन अभी तक तो हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अभी तक उनको कोई ऐसा विधायक नहीं मिले हैं। 4 विधायक जो उन्हें चाहिए थे वो तो अभी तक नहीं मिले हैं। अब सुबह 11 बजे अभी जब शुरू होगी, 11:30 बजे।
एक और बात ये सामने आ रही थी कि मनोहर पर्रिकर ने भी दावा किया और कई और लोग भी ये इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर काफी नाराज हैं अपनी लीडरशिप से। क्या ऐसे कोई आसार देख रहे हैं आप?
एक तो बात है कि पूरी 2012 से 2017 तक भाजपा की सरकार थी जो कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तो तब से कांग्रेस वाले बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो सत्ता में नहीं है, और अभी 17 मिलने के बाद भी सत्ता नहीं हासिल हुई तो वहाँ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो ऐसे भी कुछ यानी सुनने में आता था कि कई विधायक ऐसा कुछ योजना बना रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे और वहां जाके भाजपा सरकार को समर्थन देंगे और बाद में बाई इलेक्शन होगी और बाई इलेक्शन में वो फिर से चुनाव लड़के आएंगे बाद में विधानसभा में। ऐसे कुछ प्लानिंग चल रही थी, लेकिन लगता है कि आज जो कोई शक्ति प्रदर्शन जो कुछ होगा वहां ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं दिख रहा है।
ये थे गोवा से स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई, जो विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में सियासी समीकरणों के बारे में बता रहे थे। इधर पंजाब में 10 साल के बाद कांग्रेस को अपने नेतृत्व में विजय दिलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से विजय रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी अपने होने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा हटा नहीं पा रही है। नतीजे 11 मार्च को आए थे और आज 16 मार्च हो गया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, ये बताइए कि लखनऊ और दिल्ली के बीच क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा अभी तक हट क्यों नहीं रहा है?
बिल्कुल संदीप, ये पर्दा पता नहीं क्यों नहीं हट पा रहा है। यही सवाल, एक तो ये पर्दा कब हटेगा और दूसरा क्यों नहीं हट रहा है, यही सवाल लखनऊ में क्या है, पूरे राज्य भर में जिससे भी आप बात करिए, जो भी आपको फोन कर रहा है या आप फोन कर रहे हैं, पहला सवाल उसका यही होता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के दफ्तर में कल दिन भर पता बहुत सारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात मुलाकात हुई, उनके बीच में सिर्फ यही चर्चा चलती रही। कई नेताओं के दिल्ली से आने की खबरें रही, हालांकि पर्यवेक्षक के तौर पर जो इसके लिए बनाए गए हैं वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। खबरें यहाँ भी हैं और ज्यादातर ये संभावित भी लग रहा है कि आज विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता न तो राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर ये इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो सारे दिन जो आपने बताया कि रिजल्ट के बाद, हालांकि दो दिन होली में निकल गए, लेकिन अब तक तो इस बात पर कोई फैसला पार्टी को ले लेना चाहिए था, या ऐसा भी हो सकता है कि ले लिया गया हो और वो विधायक दल की बैठक में ही या उसके बाद ही इसको इस पर से पर्दा उठाना चाह रहे हो। तो बहुत संभावित है कि आज विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद तो निश्चित तौर पर ये इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा।
ये थे लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। और आइए अब रुख करें पूर्वोत्तर भारत का, जहां एक उभरती हुई प्रतिभा इन दिनों परेशान है और वो जानना चाहती है उसने आखिर कौन सा गुनाह किया है।
मीठी सी आवाज की मलिका 15 साल की नाहिद आफरीन अपने खिलाफ कथित इस्लामी फतवे की खबर सुनकर दुखी हैं। नाहिद को असम के एक कार्यक्रम में गाना पेश करना था, लेकिन ऐसी खबरें आईं कि उनके खिलाफ असम के 46 मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया है। इससे पहले खबर ये आई थी कि नाहिद ने इस्लामी चरमपंथ और आईएस के खिलाफ गाना गाया था, इसी वजह से उन्हें गाने से रोकने के लिए फतवा जारी किया गया। बीबीसी से बातचीत में नाहिद ने बताया कि वो हमेशा से एक ही तरह के गाने गाती रही हैं और उन्होंने कुछ नया नहीं गाया है।
मैं यूजुअली जो गाना गाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ लेजेंडरी सिंगर हमारे असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के गाने से ही मैं हर फंक्शन स्टार्ट करती हूँ, और असमी सॉन्ग भी गाती हूँ मैं, असमी फोक, लता जी का गाना, किशोर जी का गाना, बंगाली फोक, वो सभी मैं गाने वाली थी।
नाहिद की माँ ने बताया कि पत्रकारों के पास एक लिफाफा था, लेकिन उसमें क्या लिखा गया था इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं। खबर ये भी आ रही है कि नाहिद को जिस कार्यक्रम में गाना था वो जगह किसी मस्जिद या कब्रिस्तान के पास थी। नाहिद की माँ का कहना है कि अगर ऐसा होता तो वो खुद ही इस कार्यक्रम को रद्द कर देती।
मैं इस बात के दुखी हूँ, जो नाहिद का जहाँ पे शो हुआ था उन कमिटी के साथ उन लोगों ने कोई मीटिंग वगैरह किया तो सब तो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को कोई नोटिस नहीं भेजा गया, यहाँ पे मस्जिद है या मंदिर है, हम लोग नहीं कराते वहाँ पे।
नाहिद आफरीन म्यूजिक रियलिटी शो की उप विजेता रहने के बाद सुर्खियों में आई। उन्होंने हिंदी फिल्म अकीरा में भी गाना गाया है। इस पूरे विवाद ने उनके इरादों को मजबूत तो किया है, लेकिन उन्हें इस सबसे दुख भी पहुँचा है।
हाँ, और एक चीज है, अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड भी हो गई हूँ क्योंकि सब लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, ओनली 15 इयर्स ओल्ड, और ये सब इतना मैच्योर्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। मैं गाना तो गाऊंगी, डर वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत दुखी हुआ है। सोचा भी नहीं था कि असम के लोग ही, एक्चुअली सब नहीं, कुछ ही असम के लोग ही ऐसे मेरे बारे में बोलेंगे।
इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके कहा कि नाहिद को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नाहिद पर कुछ संगठनों के प्रतिबंध लगाने की निंदा भी की है।
रिपोर्ट सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। और आइए अब देखते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या खबरें लेकर आए हैं। दिलनवाज पाशा के हाथ में कई अखबार हैं।
जी संदीप, आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर नाहिद की ही तस्वीर है, जिनके हाथ में माइक है, गाते हुए वो दिख रही हैं और उनसे फतवे से जुड़ी खबर है, अलग अलग उनके बयान हैं। अमर उजाला लिखता है, फतवे से डरने वाली नहीं हूं, गाना गाती रहूंगी, ना ही ये दूरी। बाकी अखबारों में भी यही खबर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब इस फतवे को लेकर भी अलग अलग तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं। रात हम टेलीविजन पर देख रहे थे, जिन मौलानाओं ने पर यह फतवा देने की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया गया।
दिलनवाज, आपने फतवे का जिक्र किया, फतवा इस्लाम में दरअसल होता क्या है, ये यदि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं तो bbchindi.com पर फैसल मोहम्मद अली ने बड़े सरल शब्दों में लिखा है, आकर पढ़ सकते हैं।
जी संदीप, और इसके साथ एक और खबर आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। 3 चरमपंथियों की मौत जो है भारत प्रशासित कश्मीर में हुई है, मुठभेड़ में। ये खबर सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर लिखता है, कुपवाड़ा में मुठभेड़, 3 लश्कर आतंकी ढेर, क्रॉस फायरिंग में बच्ची की मौत। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों में है, ईवीएम को लेकर जो विवाद मायावती जी के बयान के बाद शुरू हुआ था वो अभी थमा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर शंका जाहिर की है और ये खबर सभी अखबारों में है। नई दुनिया लिखता है, ईवीएम माया जाएंगी कोर्ट, केजरीवाल को भी शंका।
और दिलनवाज, अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर संदेह जताया था।
जी बिल्कुल, और क्या ईवीएम हैक हो सकती है,
बिल्कुल।
ये खबर भी हमारी वेबसाइट पर अब से 2 दिन पहले प्रकाशित हुई थी,
अभी भी पढ़ सकते हैं
जी आप। बिल्कुल, वेबसाइट की खबरें आप कभी भी आके पढ़ सकते
बिल्कुल,
हैं
बिल्कुल।
और द ट्रिब्यून अखबार में 2 तस्वीरें हैं, एक में हेलीकॉप्टर उल्टा पड़ा हुआ है और दूसरी में विमान का इंजन। परसों इंडियन एयरफोर्स के कल इंडियन एयरफोर्स का एक सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और एक जो है ट्रेनी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये दोनों खबरें आज के ट्रिब्यून में है। जिक्र करूंगा दैनिक जागरण की एक खास खबर का, जिसके मुताबिक सरकार मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी देने जा रही है। कैबिनेट की नई स्वास्थ्य नीति पर मोहर लग गई है। स्वास्थ्य योजना में निजी क्षेत्र भी भागीदार होगा, ये अखबार की विशेष खबर है। इसके हिसाब से इसके अलावा एक और खबर जो मेरी नज़र खींच रही है, पद्मावती फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ है, उसमें राजस्थान के अब एक मंत्री का कहना है कि करणी सेना के को दिखाने के बाद ही फिल्म जो है रिलीज की जाएगी। और ये खबर आज के द इंडियन एक्सप्रेस में है। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री थे, अब गिरफ्तार हैं। इनकी गिरफ्तारी की खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, बलात्कार का आरोपी गायत्री प्रजापति लखनऊ से गिरफ्तार। अब से कुछ दिन पहले जब मैं अखिलेश जी से मिला था तो मैंने इनसे जुड़ा सवाल किया था, उन्होंने कहा था फरार हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि अब सरकार बदलने के बाद गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या इसमें इनके गिरफ्तार न होने में कोई भूमिका समाजवादी पार्टी की थी, इसकी जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली चिड़ियाघर के काले जो स्वान है, ब्लैक स्वान, उसकी तस्वीर प्रकाशित की है और चिड़ियाघर ने ब्लैक स्वान के अंडों को पाइथन से बचाने के लिए विशेष गार्ड तैनात किए हैं। मैं आपको बताऊं संदीप, दिल्ली के चिड़ियाघर में इन काले जो ब्लैक स्वान से इनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनको इस काले हंसों के जोड़े को एक साथ देख लें तो आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता
तो
है।
तो आप जाएंगे देखने?
जी बिल्कुल, मैं कई बार इनको देखने जा चुका हूँ लेकिन मुझे एक साथ नहीं दिखे हैं।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की समीक्षा विस्तार से करने के लिए। और आज दुनिया जहान में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे जुर्म की दुनिया में कार्लोस द जैकल के नाम से जाना जाता है।
दुनिया जहान,
वियना, December 21st, 1975।
साल 1975 की 21 दिसंबर को वियना में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के मुख्यालय पर एक चरमपंथी हमला हुआ। केवल 6 हथियारबंद लोगों ने इस मुख्यालय को वहां मौजूद मंत्रियों के लिए जेल में तब्दील कर दिया। 3 लोगों की जान गई और ऑस्ट्रिया के चांसलर को न सिर्फ इन्हें वहां से जाने के लिए जेट विमान मुहैया करानी पड़ी बल्कि हर 2 घंटे पर देश की प्रसारण सेवाओं से फलस्तीन के पक्ष में संदेश प्रसारित करने पर भी विवश होना पड़ा। 6 लोगों के उस हथियारबंद गुट का नेतृत्व किया था 24 साल के इलीच रेमिरेज सांचेज ने, जो इस कार्रवाई को अंजाम देने के पहले ही कार्लोस के नाम से चर्चित हो चुके थे। इस घटना के बाद कार्लोस का नाम पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के रक्षा संपादक सुशांत सिंह,
70 के दशक में पैलेस्टीन में बहुत सारे इस तरह के
मिलिटेंट या टेररिस्ट या यू नो फाइटर्स आप जो भी बोले, बहुत सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग करते थे और काम करते थे, जैसा कि म्यूनिक ओलंपिक्स में हुआ और भी जगह उन्होंने हमले किए इजरायली लोगों के खिलाफ। ये तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त काम कर रहे थे, उसी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग की थी और उसी के लिए ये काम कर रहे थे। पर वियना के बाद, क्योंकि वियना का इतना इंटरनेशनल था और उसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और भी कई सारे देश इन्वॉल्व थे, कार्लोस को ख्यात उसके बाद ही।
कार्लोस ने 60 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया, इनमें ज्यादातर मंत्री थे। बाद में उन्होंने सरकार के अनुरोध पर 20 बंधकों को रिहा कर दिया और 42 बंधकों समेत उनकी टीम DC-9 जेट विमान से रवाना हुई। रास्ते में विमान लीबिया के त्रिपोली में उतरा, वहां कुछ और बंधकों को रिहा किया गया और फिर बाकियों को लेकर कार्लोस अल्जीरिया चले गए। कहा जाता है कि कार्लोस को हर बंधक की रिहाई के बदले करीब $20 लाख की रकम मिली थी। कार्लोस ने ये कार्रवाई फलस्तीनी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP के लिए की थी, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद PFLP ने उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। सुशांत सिंह इसकी वजह बताते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो फिरौती की रकम वियना के बाद उनको मिली, उस रकम को हड़प गए और वो रकम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिली, तो उसकी वजह से भी शायद उनका कुछ दूरियां हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन से, पर वो अपने आप को वो फिर भी एक फिलिस्तीन फाइटर और फिलिस्तीनी कॉज के लिए बोलते रहे।
कार्लोस ने लंदन में मार्क एंड स्पेंसर के मालिक एक यहूदी कारोबारी जोसेफ सीफ को सबसे पहले निशाना बनाया। बहुत करीब से गोली मारने के बावजूद वो बच गए, क्योंकि कार्लोस की पिस्टल फंस गई और दूसरी गोली नहीं चल सकी। कार्लोस को भागना पड़ा। इसके बाद 1974 में फ्रांस के एक शॉपिंग सेंटर में ग्रेनेड फेंकने का आरोप कार्लोस पर लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हुए। साल 1975 में फ्रांस की पुलिस ने माइकल मुखरबाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो PFLP की तरफ से कार्लोस को निर्देश देता था। माइकल पुलिस को अपने साथ कार्लोस के एक फ्लैट में लेकर गया। कार्लोस ने इन लोगों का स्वागत किया, इन्हें ड्रिंक परोसा और फिर दराज से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। माइकल और 2 पुलिस वालों की जान गई, 1 पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। फ्रांस की पुलिस इस घटना के बाद उसके पीछे पड़ गई और फ्रांस के जासूस हर तरफ उसकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान लंदन के एक फ्लैट में उन्हें पकड़ने के लिए छापे के दौरान फ्रेडरिक फॉर्सेथ का उपन्यास द डे ऑफ द जैकल हाथ लगा। यही से मीडिया के लिए कार्लोस द जैकल बन गया। यूरोप और कार्लोस की ये आंख मिचौली पूरे 2 दशक तक चलती रही। आखिरकार 1994 में उसे सूडान में गिरफ्तार किया गया। इस पूरे दौर में कार्लोस अपनी हरकतों से फ्रांस और दूसरे देशों के सीने पर जख्म देता रहा।
उसके बाद जो उन्होंने बड़े हमले किए वो 80 के दशक में किए, जो कि फ्रांस में हुए, जबकि फ्रांस से उनकी उस समय की प्रेमिका और बाद में उनकी पत्नी बनी, उनको एक टेरर अटैक के लिए गिरफ्तार कर लिया और उसके बदले में उन्होंने 4 अटैक 82 और 83 में किए फ्रांस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर और बाकी जगह के ऊपर। उसके लिए ही अभी जो उनको सजा मिल रही है फ्रांस से, वो उनको उन्हीं हमलों के लिए कार्लोस को सजा मिल रही है।
गिरफ्तार होने पर फ्रांस में लंबी सुनवाई के बाद कार्लोस को 2011 और 2013 में 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब 1974 में पेरिस के शॉपिंग सेंटर पर हुए ग्रेनेड हमले के आरोप में भी उस पर मुकदमा शुरू किया गया है। सोमवार को कार्लोस ने अदालत में बयान दिया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं था, साथ ही ये भी कि वो फलस्तीनी क्रांतिकारी है और सिर्फ क्रांति के लिए ही लोगों को मारा है। वेनेजुएला में एक अमीर वकील के घर पैदा हुए कार्लोस को कम्युनिस्ट विचारधारा विरासत में मिली। हालांकि बहुत जल्द ही उनकी माँ उनके भाई बहनों के साथ उन्हें लंदन लेकर चली गई और उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो मॉस्को गए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेनेजुएला में जन्मे कार्लोस फलस्तीनी लड़ाकों के संपर्क में कैसे आ गए?
देखिए, ऐसा हुआ, उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे 70 के दशक में, जो फलस्तीन के ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हों, चाहे वो थ्योरिस्ट हों, चाहे वो फाइटर्स हों। तो ऐसा नहीं है कि कार्लोस अकेले थे, क्योंकि वो सोवियत यूनियन में गए, वहां पर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से वो 1970 में निकाल दिए गए। तो उस तरह से उनका आइडियोलॉजिकल जो उनका कमिटमेंट था और जो उनका विचार था वो उस तरह ही का था, और इस तरह के उस समय बहुत से लोग लड़ रहे थे। आपको पता है कि फिलिस्तीन में उस समय सिर्फ फिलिस्तीनी लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग जाके लड़ते थे, कि भाई, क्योंकि वो मानते थे कि ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी कॉज है और एक बड़ी प्रोग्रेसिव कॉज है और ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि कार्लोस जैसा बंदा जो वेनेजुएला से आया और जो सोवियत यूनियन वगैरह में जिसने पढ़ाई की, वो बाद में जाके फिलिस्तीनियों के संपर्क में आया और उनके साथ लड़ाई सीखी।
PFLP से अलग होने के बाद कार्लोस कई और देशों की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आए।
इनमें केजीबी से लेकर जर्मन खुफिया एजेंसी स्टासी का भी नाम है। इसके अलावा सीरिया, लीबिया और इराक ने भी कार्लोस का इस्तेमाल किया।
वो तो तकरीबन स्वतंत्र रूप से काम करते रहे और उनका इतना बड़ा वो हो गया कि वो फिर ऑलमोस्ट ऑन हायर हो गए कि भाई फला फला ने बोला, सीरिया ने बोला तो वहां जाके काम कर लिया, और लीबिया ने कुछ बोला तो लीबिया के लिए काम कर दिया। फिर भी वो ये बताने की कोशिश करते थे कि वो एक रेवोल्यूशनरी लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस घटना के बाद जो मनमुटाव हुआ और जिस तरह से वो फ्रीलांसर हो गए कि 2 साल सूडान में और 3 साल यहाँ पर और 2 साल लीबिया के अंदर, वो बहुत सारे कंट्रीज में रहे और बहुत सारे देशों में रहे और उनके लिए उन्होंने अलग अलग तरह की कार्रवाइयां की, पर ऐसा कोई कमिटेड फिलिस्तीनी कॉज के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ऑल्दो वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी मानते रहे और अमेरिका के खिलाफ काम करने वाला मानते रहे, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन की सपोर्ट में स्टेटमेंट भी दिए और बोला कि ओसामा बिन लादेन ने बड़ा अच्छा काम किया।
लगातार घूमते रहने और अलग अलग शहरों में ठिकाना बनाने वाले कार्लोस कई भाषाएं जानते हैं और इसे भी उनका एक बड़ा हथियार माना जाता है। खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी बिली वॉ ने सूडान में उनका पता लगाया था। उन्होंने रिटायर होने के बाद BBC से एक बातचीत में कहा,
If you have the language, comprehensive language ability, you can fit in anywhere.
अगर आपके पास भाषा पर जबरदस्त पकड़ है तो आप कहीं भी फिट हो सकते हैं, और कार्लोस के पास यही खूबी थी।
कार्लोस की प्रेमिकाओं की फहरिश्त भी काफी लंबी है और उन्हें खूबसूरत लड़कियों को अपने मकसद में उपयोग करने का भी महारथी माना जाता है। इस वक्त जब वो फ्रांस की जेल में बंद हैं, तो अदालत में उनके बचाव के लिए उनकी वकील पत्नी ही उनका साथ दे रही हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
तीसरे टेस्ट मैच में रांची में ऑस्ट्रेलिया और भारत आज फिर होंगे आमने सामने। सुनते हैं विस्तार से खेल समाचार।
खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से रांची में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। अभी तक के हुए दोनों टेस्ट मैच न केवल खेल के लिहाज से बल्कि फील्ड पर ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच हुई कहासुनी की वजह से भी सुर्खियों में रहे। बेंगलुरु टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बीच हुए DRS मामले पर हुई तूतू मैमे न केवल भारतीय मीडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी गरमाई रही। अब इस सीरीज में आगे का माहौल कैसा रहने वाला है, विराट कोहली ने कल रांची में एक प्रेस वार्ता में कहा,
बोथ टीम्स हैव मूव्ड अहेड फ्रॉम बेंगलुरु।
जो बेंगलुरु में हुआ सो हुआ, दोनों टीमें उस किस्से को भुलाकर आगे बढ़ चुकी हैं। अब फोकस सीरीज पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्राथमिकता क्रिकेट को देनी चाहिए और बाकी चीजें तो होती ही रहती हैं। हम समझते हैं और अब आगे ही बढ़ना होगा।
ये थे भारतीय कप्तान विराट कोहली, जो आज रांची की पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेंगे। लेकिन पिच होगी कैसी, आज तक रांची में कोई अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हुआ ही नहीं है। कितना जानते हैं रांची की पिच को वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली?
मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि रांची की पिच ना ये बेंगलोर जैसी होगी, ना पुणे जैसी होगी और ना ही धर्मशाला जैसी होगी। मैं उन वेन्यूज की बात कर रहा हूं जो वेन्यूज इस टेस्ट श्रृंखला में चुने गए हैं, और रांची की पिच बहुत अलग होगी, थोड़ी ब्राउन कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि शायद पहले सेशन में ही बॉल घूमना शुरू कर दे, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि रांची की पिच इन दोनों से बेहतर होगी।
पिच अभी तक की सीरीज में काफी चिंता का विषय रही है। ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पुणे की पिच को बुरा और बेंगलुरु की पिच को स्टैंडर्ड से कम बताया था। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। दोनों ही टीम रांची टेस्ट मैच को जीत इस सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। और साथ ही कल पूर्व BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर ने हैरानी भरा कदम उठाते हुए निजी कारणों का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर सिर्फ 8 महीने के लिए ही इस पद पर रहे।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर को आज सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को संघीय अदालत ने एक और बड़ा झटका दिया है। हवाई प्रांत के एक संघीय जज ने ट्रंप के कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमरीका आने पर रोक लगाने के नए आदेश को प्रभावी होने से चंद घंटे पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है। नीदरलैंड्स में कल हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री मार्क रूट की मध्य दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने की प्रबल दावेदार बनती दिख रही है। कट्टरपंथी गीर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी ने उम्मीद से बहुत खराब प्रदर्शन किया है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। नमस्कार भारत में आज इतना ही। शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। हमारे अगले कार्यक्रम का नाम और समय आप जानते हैं, दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की हलचल के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।